شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ یہ بتائیے کہ کل کی ٹپ بچوں کو نماز کی دعوت دینے پہ عمل کیا، کیسا رزلٹ نکلا؟ جی آپ شیئر کیجئے. کہا کہ نہیں کوئی بچے نے کوئی آپ کو کمپلیمنٹ دیا؟ بچے کہوں گے ماما آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی آپ آپ کے بچے آپ کو اٹھاتے ہیں، آپ خوش قسمت ہیں، آپ ان کے اٹھانے پہ اٹھ جائیں انشاءاللہ. دیکھیے گا اللہ ان سے اور بھی نیکیاں لے گا. شاباش. بچوں کی تربیت سے پہلے اپنی تربیت. الحمدللہ بہت کچھ تھا اس بارے میں، اور آج کے ہمارے نصیب میں اگر واقعی وہ سب کچھ ہوا جو ان آیات میں جو آج ہم پڑھنے والے ہیں، تو انشاءاللہ حضرت عمر کی طرح ہمارا بھی دل بدل جائے گا. آئیے دیکھتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دورہ قرآن 2017 کے ڈے 19 دن کا آغاز کریں گے، اور آج ہم سورۃ طٰہٰ کے آغاز سے شروع کریں گے. سورۃ طٰہٰ قرآن پاک کی ایک خوبصورت سورت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان کو دل سے زبان پر لانے والی یہ سورت ہے. فاطمہ بہن تھی اور عمر بھائی تھا. ساری زندگی بہن اور بھائی نے ایک دوسرے کو جو کچھ دیا اور لیا ہوگا، اس میں سے سب سے خوبصورت چیز کہ بہن کی کوشش سے بھائی کو اللہ نے ایمان نصیب کر دیا. دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے بھائیوں کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ بھائی بہن کے رشتے میں جو ایک محبت اور ایک مٹھاس ہوتی ہے اس کو قائم رکھے، اور ہم ایک دوسرے کی دنیا کی فکریں کرتے کرتے آخرت کی فکر بھی کرنے لگ جائیں. دوسری بات ہے کہ سورۃ طٰہٰ کے اندر لفظ خشیت بہت آئے گا. تخشا، حاشا، خشیہ. کیوں؟ اللہ کی خشیت ہی وہ چیز ہے جو بندے کو نیکیاں کرنے پہ مائل کرتی ہے، اور اس صورت میں بھی نماز کی بہت بات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم قرآن پاک کی پیک پہ ہیں، بالکل عروج پہ ہیں. اب ہمیں ایمان کے ان درجوں پہ فائز ہو جانا چاہیے کہ جہاں خود نماز پڑھنے کو دل کرے، जैसे किसी से मोहब्बत हो तो उससे बातें करने को दिल करता है। कभी किसी ने पूछा, दोस्त से बात करना फर्ज है कि सुन्नत है कि नफिल है, कितने पढ़ूं, किस तरह पढ़ूं? मोहब्बत दिलों को फतह करती है। जब दिल में अल्लाह की याद होती है ना, तो नमाज असल में वो नमाज होती है जिसमें अल्लाह की याद भी है और अल्लाह ताला की मोहब्बत भी है। इसके बरक्स आप देखिए कि बगैर अल्लाह ताला की मोहब्बत और उसके नाराज होने के डर के जो नमाजें पढ़ी जाती हैं वो बस ऐसे ही हैं। तो यख्शा का लफ्ज़ बहुत दफ़ा आएगा, और इस सूरत के अंदर असल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के नशेबो फराज से सबक लेना सिखाया गया। आज फिर हम नशेबो फराज ही की बातें देखेंगे, जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हमने देखी थी। और हकीकत है कि अल्लाह ने जिसको भी अपने काम का बनाया उसको बहुत से मरहलों से गुजारा, और ये सूरत आपको मुझे उम्मीद भी दिलाएगी कि हो सकता है किसी वक्त अल्लाह हमें भी चुन ले। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों से कत्ले खता हो चुका था जिसके बाद उनको नबूवत मिली, तो कोई बड़े से बड़ा गुनाह हमारे अल्लाह की तरफ आने में रुकावट नहीं बनने का इंशाल्लाह। और इसमें हमें मुख्तलिफ किस्से भी मिलेंगे, और सब का खुलासा ये है कि हालात जैसे भी हों, सब्र इस्तकामत से काम लो तो अल्लाह ताला मदद तुम्हारी ज़रूर करेगा। और ये मदनी दौर के बिल्कुल मिडल में तकरीबन 5 नबवी के अराउंड ये सूरत नाजिल हुई थी, और बहुत रस्सा कशी थी। अभी हज़रत उमर भी जैसे शख्स मुसलमान नहीं हुए जो 6 नबवी में मुसलमान हुए थे। तो इस सूरत से हम बहुत कुछ सीखेंगे, आइए देखते हैं। पिछली सूरत मरियम थी, उसमें हज़रत ईसा के फॉलोअर्स को तौहीद के दलाइल दिए गए। तो ये सूरत तौहा है, जिसमें नसारा के बाद अब यहूद की हिस्ट्री और हज़रत मूसा की ज़िंदगी की बात हो रही है। और इससे अगली सूरत में 16 नबियों के किस्से हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस एक सूरत में हज़रत मूसा का किस्सा है। जिस नबी का जिक्र सबसे ज़्यादा हुआ वो इसी में है। और इसमें एक और भी चीज़ है कि इस सूरत का आगाज़ भी अल्लाह ताला के कुरान से है, तौहा मानजल अलैकल कुरान अली तश्का, और आप आखिरी आयतों में भी कुरान ही का तस्करा पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें इससे बेहतरीन फ़ायदा लेने वाला बनाए। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौहा मा अनजलना अलैकल कुरान अली तश्का। तौहा, हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ, ये तो एक याद दहानी है हर उस शख्स के लिए जो डरे। कितना खूबसूरत पैगाम है, क्यों डरते हो इस कुरान से? क्यों तुम कहते हो कुरान के बाद ज़िंदगी बोझल हो गई, मुश्किल हो गई, हालात तंग हो गए, अब वक्त नहीं मिलता, अब ये हुआ? तो इस पे मेरे आपका अमल भी यही है कि इस कुरान को अपने लिए वजह मुसीबत नहीं बनाना, इसको एक ऑनर बनाना है। और हकीकत यह है कि जितना ज़्यादा हम इस किताब को अपने दिल की बहार बनाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें इस किताब से फ़ायदा होगा। नाजिल किया गया उस ज़ात की तरफ से जिसने पैदा किया ज़मीनों को और बुलंद आसमानों को। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, वो रहमान जो अर्श पर मुस्तवी हुआ। लहू माफिस समावाति व माफिल अर्द, उसी का है जो कुछ आसमानों ज़मीन में है। 3 सेकंड सोचिए, कितना मरूब होते हैं दुनिया में किसी का घर बंगला कोठी गाड़ी देखकर, किसी का कोई बहुत बड़ा महल हो, कहते हैं हाय हो लकी दे यार। तो क्या हम अल्लाह से मुतासिर नहीं होते? सब आपके रब का है, मेरे रब का है। तो फिर जब आप और मैं उस रब के नाम के साथ अपने आप को जोड़ेंगे तो सब किसका हो जाएगा? आपका मेरा हो जाएगा। जो आसमानों जमीन के दरमियान में है और जो मट्टी के नीचे है, तुम चाहे अपनी बात पुकार कर कहो, वो तो चुपके से कही हुई बात बल्कि इससे मख्फी तर बात भी जानता है। वो अल्लाह है, इसके सिवा कोई खुदा नहीं, इसके लिए बेहतरीन नाम है। दुनिया में देखिए, जो लोग बहुत माल रखते हैं या अथॉरिटी रखते हैं, तो अमूमन वो लोगों की रीच से ऊपर चले जाते हैं, उन तक पहुंचने में बीच में कई सहारे ढूंढने पड़ते हैं। अल्लाह ने आपको मुझे अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना एक एक पता खुद दिया हुआ है कि जब चाहो पुकारो। वह इजा साला कई वादी अन्नी फनी करीब, तो खुशकिस्मत है वो लोग जो अपने हर दुख और हर तकलीफ और ज़रूरत के वक्त अपने रब को पुकारते हैं। अब यहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की कहानी शुरू होती है। वह लता का हदीस हो मूसा, और ये अंदाज़ भी देखिए कितना प्यारा है, और तुम्हें कुछ मूसा की खबर भी पहुँची है। किसी को एकदम कोई बात सुनाने लग जाए तो शायद उसकी तवज्जो ना हो, तो सवालिया अंदाज से बात शुरू की जाए तो तवज्जो ज्यादा मबजूल होती है। यहाँ पेरेंटिंग का एक नुक्ता भी नोट करें, अपने बच्चे को कुछ कहने की बजाय ये अंदाज इख्तियार किया करें, बेटा आपको पता है बेटा आपने कुछ सुना? बेटा आप जानते हैं नमाज से क्या होता है? बेटा आप जानते हैं, जब वो आपकी तरफ अपने कान लगा दे फिर दिल खोलकर आप उनसे बातें करें। क्या खबर, जब किसने एक आग देखी और अपने घर वालों से कहा जरा ठहरो मैंने एक आग देखी है, शायद कि तुम्हारे लिए एक आध अंगारा ले आऊं या इस आग पर मुझे रास्ते के मुतल्लिक रहनुमाई मिल जाए। वहां पहुंचे तो पुकारा गया, मूसा मैं ही तेरा रब हूं। जरा सा रुकिए और इसके अरबी लफ्जों को पढ़िए, आपको अपने दिल पर रिक्कत तारी होती हुई महसूस होगी, क्योंकि हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ। जरा इमेजिन तो कीजिए मूसा के दिल का क्या हाल हुआ होगा। अल्लाह ने जब पुकारा होगा कि मैं हूँ अल्लाह, जूतियां उतार दे तू वादी मुकद्दसे तुबा में है और मैंने तुझको चुन लिया, सुन जो कुछ वही किया जाता है, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। जो कैफियत मूसा की वहां हुई होगी ना, वो आपकी मेरी नमाज में हो सकती है। याद रखिए नबी सल्लम को मेराज के मौके पे बुलाकर कलाम किया गया, अल्लाह ताला के नबी ने कलाम किया, अल्लाह ताला से डायरेक्ट बातचीत हुई। आपके मेरे साथ कैसे होंगी जब हम नमाज पढ़ के अल्लाह से बातें करते हैं, और जब हम कुरान पढ़ते हैं ना तो कलाम होता है। क्या आपको कभी कभी कुरान सुनते वक्त महसूस नहीं होता कि हमारी ये कॉल मिली हुई है और डायरेक्ट डायलिंग है और हम अपने रब से बातें करें? मुझे तो अक्सर वक्त का एहसास ही नहीं होता, ऐसे लगता है कि बिल्कुल कोई तोड़े बिना सिलसिले को, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक को महसूस करने का बेहतरीन तरीका इस किताब को थाम लीजिए। साथ ही फरमा दिया, करो क्या, वाकिमिस सलात अली जिक्री, बस तू मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। आपको याद है पीछे सूरत मरियम में हजरत ईसा का पहला कलाम था, क्या कहा, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताबा, किताब दी गई और उसी में क्या हुक्म दिया गया था, नमाज का। हजरत मूसा को किस बात का हुक्म दिया जा रहा है, नमाज का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम हुआ तो और मेराज के मौके पे तो क्या तोहफा मिला, नमाज। तो नमाज नमाज और नमाज, दीन की मेराज नमाज है। नबी सल्लम को तो कितने फासले तय करवा के मेराज करवाई गई, मेरी आपकी मेराज कब होगी, जब हम दिल से नमाज पढ़ेंगे। लेकिन बात यह है कि वो नमाज जिसमें राबता ना जुड़ा हो उससे क्या मिलेगा। अल्लाह कहते मेरी याद के लिए नमाज पढ़ो, हमारा आज हाल क्या है कि हमें सब याद आते हैं नमाज में अल्लाह के सिवा, सब भूली बिसरी बातों का जवाब मिलता है नमाज में। और सच्ची बात है कि अल्लाह तो क्या याद रहे, हमें तो ये भी याद नहीं रहता कि रकातें कितनी पड़ी हैं। फिर उस नमाज से हमारे दिल की दुनिया कैसे बदले। आप देखिए जब मेन कनेक्शन बंद होता है ना, तो आप जितने मर्जी बटन दबा दें बल्ब फिर भी नहीं चलते। इसी तरह हमारा अल्लाह ताला से मेन कनेक्शन अगर मोहब्बत का कटा हुआ है या मेन स्विच बंद है, तो नमाज की जितनी मर्जी रकातें पढ़ ले फायदा नहीं होता। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी नमाजों को जिंदा कर दे। फिर आप देखिए कि नमाज का फायदा क्या होता है, कि ये अल्लाह ताला के साथ हमारा डायरेक्ट ताल्लुक पैदा करती है। कैसे, मसलन आपने कभी पाकिस्तान में देखा होगा कि पानी खींचने के लिए मोटर चलाई जाती है ना, अब नीचे पानी है, बिजली की पावर के साथ आप एक मोटर चलाते हैं, पानी ऊपर चला जाता है। कभी आपने देखा हो मोटर चल रही है पानी नहीं आ रहा ऊपर, बाद में पता चलता वॉल्व बंद था, ओहो वॉल्व खोला घटघट पानी ऊपर चला गया। बिल्कुल इसी तरह मुझे आपको दिन में कई बार अल्लाह ताला से कलाम का मौका मिलता है, हमें दुआओं की सूरत में अल्लाह ताला से मौका मिल जाता है और बात करनी भी होती है, लेकिन हमारा ताल्लुक टूटा हुआ है। आप फोन उठाएं और बगैर कनेक्शन मिलाए बातें शुरू कर दें, किससे बात करे, कोई नहीं है, कौन, कोई नहीं, रब्ता ही नहीं हुआ, कहते नहीं लाइन कट गई। तो आज आपने जरूर इस चीज पे गौर करना है, अपने बच्चों की नमाजों को तो देखना है, अपनी भी तो देखें। यकीन करें अगर ये नमाज का वक्त आपने अपने लिए रख लिया, सब कुछ बंद, सारे सहारे कट गए, सब कुछ पीछे हो गया, तो उसके बाद आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला आपका अगली नमाज पढ़ने को दिल करेगा। और नमाज की कबूलियत की शान क्या है कि आपको अगली नमाज का इंतजार लग जाए। क्यामत की घड़ी जरूर आने वाली है, मैं इसका वक्त मख्फी रखना चाहता हूँ ताकि हर नफ्स अपनी सही के मुताबिक बदला पाए, बस कोई ऐसा शख्स जिस पर ईमान नहीं लाता और अपनी ख्वाहिश नफ्स का बंदा बन गया, वो तुझको इस घड़ी की फिक्र से न रोक दे वरना तू हलाकत में पड़ जाएगा। क्या पता चला कि नफ्स की ख्वाहिशात जितनी पूरी करते रह जाए उतनी ही क्यामत दूर लगती है, उतना ही इंसान आखिरत से गाफिल हो जाता है। अरे मूसा, ये आपके हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है, इस पर टेक लगाकर चलता हूँ, इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, और भी बहुत से काम है जो उससे लेता हूँ। मूसा तो अपनी लाठी के गुण गा रहे हैं। आज की जुबान में कह दें कि मूसा ने कहा, मेरा तो इसके बगैर एक मिनट गुजारा नहीं। हुक्म सुनिए शाने बे न्याजी, काल अल्किहा या मूसा। मूसा, फेंक दे इसको। ये क्या हुआ? ये करना पड़ता है, लिख लीजिए। वो सहारे जो मैंने आपने पकड़े होते हैं उसको फेंकना पड़ता है, फिर समझ आएगी। और जहां ये भी बात पता चलती है कि जो वही को गौर से सुनेगा वही चुना जाएगा। खैर, मूसा ने ना सवाल पूछा, ना बात की, ना कुछ। कहा ठीक है, फल का फैजा ही या हैयतुन तसा। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको फेंक दिया, और यकायक वो तो एक सांप था जो दौड़ रहा था। ये है बंदगी, इसको लिख लें। ये चाहिए मुझे अपने से और आपको अपने आप से। नबियों ने चूं चाह नहीं की, हम तो हिकमत ही मालूम करते रह जाते। क्यों फेंकूं, इसके बगैर क्या हो गया, फेंक दिया तो क्या हो गया, फिर मुझे जरूरत पड़ गई तो क्या हो गया, कोई शेर आ गया तो कैसे मारूंगा, और अगर देख लीजिए अल्लाह जी मुझे श्योरिटी दें फिर मैं जाऊंगा। अल्लाह ने कहना था, मूसा जी आप घर बैठे, मुझे नहीं आपकी जरूरत, लिख लीजिए ये काम। ये है वो सबमिशन, या कनाबुदु या कनस्तई। अल्लाह के कहने पे छोड़ा, और जब छोड़ा तो पता चला असल ये था। हमने भी बहुत सारी चीजें दुनिया में थामी होती हैं। हम कहते फी हमारे बौखरा, बड़े फायदे की चीज है, जब अल्लाह के हुक्म पे छोड़े फिर पता चलता है इसने तो मेरी जिंदगी जीरन की हुई थी। और ये चीज मैंने बहुत साथियों से सुनी है जो किसी न किसी कर्जे के बोझ में फंसे हुए थे, इंटरेस्ट बेस्ड कर्जे, और वो खुश थे कि कोई बात नहीं, कोई नहीं, 1-20 साल बाद से घर तो अपना हो जाएगा। जब अल्लाह ने कुछ उनको समझ दी, होश दी, उससे निकले, कहते हैं अब आसूदगी से सांस लिया। हमें तो एहसास ही नहीं था कि हम इतने चक्रों में फंसे हुए। जो कमाई होती है सारी घर चली जाती है, इधर पैसे आते हैं उधर किस्तों में चले जाते हैं। तो याद रखिए कि मेरी आपकी अकल इतनी ज्यादा नहीं है, अल्लाह को पता है मेरे आपके हक में क्या बेहतर है। खैर, अब सांप बन गया तो एक और इम्तिहान। काला खुजहा वला तखफ, पकड़ ले इसको और डर नहीं, हम इसे फिर वैसा ही कर देंगे जैसी ये थी। जरा रुकिए, खुद को सहरा में महसूस करें, अंधेरी रात है, बीवी दूर बैठी है, उसके लिए कुछ आग पानी का इंतजाम करने गए हुए, रात के अंधेरे में ये सारी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, आपके हाथ का असा है, आप तो उसको अपना दोस्त समझे बैठे थे, पता चला असल में सांप था, और जब सांप बन गया अल्लाह के कहने पे आपने छोड़ा तो कहा अब पकड़ो। मैं यहाँ कांप जाती हूँ। देखिए, लाठी छोड़ना आसान था, चलो नहीं तो ना सही, अभी मैं खुद भी चल सकता हूँ, अल्लाह के कहने पे खुजहा वाला हुक्म आसान है कि मुश्किल? बहुत मुश्किल। सांप को कोई पकड़ सकता? मूसा को तो नहीं पता था ये सांप बाद में लाठी बनेगी। ये है बंदगी, ये है असल में क्वालिफिकेशंस। और लिख ले, अल्लाह ताला मूसा को टेलर मेड बना रहे थे। अभी अल्लाह ताला कहेंगे तो यहां समझिए, अल्लाह ताला ने जिससे दीन का काम लेना होता है पहले उसको टेलर मेड करता है। जैसे आप दर्जी को नाप देते हैं ना, ये लंबा, इतना छोटा, यहाँ के बाजू, ये काटो, ऐसा काट, वैसा काट, फिर जब वो कपड़ा पहनते हैं आप कहते हैं अब ठीक है, अब ये नाप का सिला हुआ है। बिल्कुल इसी तरह हम अपनी तरफ से बहुत ही उलझे होते हैं, हमारी जिंदगी में कई चीजें बेकार होती हैं, हम अल्लाह के कामों की दुआएं करते हैं और वाकई मुखलिस होते हैं उसमें, तो फिर अल्लाह कहते हैं आप ट्रिम करो अपना वजन, गुनाहों का कम करो ताकि इस कमीज के अंदर तुम फिट हो जाओ। और यकीन कीजिए, बहुत सारों को पहले नहीं पता होता कि कल अल्लाह हमें क्या बना देगा। किसी कामयाब, किसी फाल, किसी दूसरों को फायदा देने वाले बंदे से पूछो, सुनाओ 10 साल पहले क्या सोचते थे, सुनाए स्कूल लाइफ में क्या सोचते थे, कॉलेज लाइफ में क्या था, आप ही जैसे थे, ऐसे ही थे जैसे सब होते हैं, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। और दुनिया की जितनी मर्जी तरक्की इज्जत दुनिया में मिल जाए, लेकिन दीन की इज्जत मिलने से पहले ये शर्त है कि समेना व अताना। नहीं समझ आ रही फिर तो और करें, हिकमत नहीं मालूम हो रही तो और करें, कह के मैं अपनी अना को तोड़ रहा हूं, मैं अपने बुत को तोड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने ये करके दिखाना है कि मैं उसके रास्ते में कितनी संजीदा हूं। फिर आप देखिए, जब पकड़ लिया तो पहले खौफ था अब उम्मीद। अलीमानु बैनल खौफी व रिजा की बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि पहले खौफ ज़दा किया सांप दिखाकर, और अब उम्मीद अफजा बात क्या। और जरा अपना हाथ अपनी बगल में दबा, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। ये दूसरी निशानी है इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाने वाले हैं। यहां से फिर नोट कीजिए कमल की बात, शुरू शुरू में बहुत मुश्किल होता है दीन का काम करना, जैसे हर नया काम मुश्किल होता है। प्रैक्टिस भी नहीं होती और अना भी बहुत होती है और अपने आप को खुद पसंद करने का बहुत शौक भी होता है और सबसे बड़ी बात है इर्द गिर्द को उसकी मिसाल भी नहीं दिखती। आप एक दफा जबर करके वो जिसको कहते हैं मुंह सर लपेट के बस चल पड़े उस रास्ते में, उसके बाद जिसको पंजाबी में कहते हैं सत्ते ही खैर, फिर नहीं नुकसान होता। ये ऐसे ही है जैसे शादी का शुरू का साल बहुत मुश्किल होता है, ग्लैमरस बहुत लगती है। कभी यंग बच्चियों से शादी का नाम छेड़े तो शर्माएंगी लुझाएंगी, उनको क्या लगता है शादी क्या है, अच्छे कपड़े पहनना, जेवर पहनना, घूमना फिरना, खाना पीना, और सबसे बड़ी बात आजादी, अम्मा अब्बा से पूछना नहीं पड़ेगा कहीं जाते हुए। ये पहले दौर की लड़कियों की कहानियां थी, आजकल तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपके जहन में ग्लैमर होता है। जूं ही शादी होती है रोती क्यों है? वो एक भाई था तो बहन को देखा शादी के एक दो दिन पहले, खूब रोती जाती, जैसे लड़कियां पहले रोती थी, कहता हाँ तैयारियां तो बड़े शौक से कर ली हैं, आखिरी दिन रो रही है, यानी बढ़ चढ़ के तैयारियां करती हैं लेकिन रोती हैं। लेकिन जब शादी करके वहां पहुंचते हैं उस घर में और उसी इंसान से जिसके लिए इंसान का ऐसे लगता था ना मिला तो पता नहीं क्या होगा, तो फिर कहते इट्स ओके, ना भी मिलता तो ठीक था। फिर उसके बाद जरा सा वास्ता पड़ा, जिस दिन सास ने झाड़ू हाथ में पकड़ाया और आंसू निकले मोटे मोटे, और जिस दिन मियाँ साहब ने कहा कि बेगम अब जरा आप उठिए, मेहंदी उतर गई है, मेरे कपड़े भी इस्त्री कर दें धो दें, फिर समझ आता है। वो साल बड़ा औखा होता है, एक साल में एक बच्ची अगर एडजस्ट हो गई फिर वो सारा घर उसका है। अब एक मिसाल दी आपको, अब ये मिसालें तो हमें बहुत आती हैं दीन के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह का बंदे में। बस आप इसी मिसाल को थोड़ा सा और आगे एलेबोरेट कर लें। कहते हैं कि एक पाँव तुम नफ्स पे रखो तो तुम्हारा अगला पाँव जन्नत में होगा। अम्मा मन खाफा वनहन नफ्स अनिल हवा, तो मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह की बात मानी, अल्लाह ने उनको बड़ी बड़ी निशानियां दिखा दी। अब मूसा अलैहि सलाम इस काबिल हो गए कि वो पहुंचे फिरौन जैसे दरबार में। अच्छा आप वो सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी क्या मुश्किलें हैं, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, लो हम कोई नाकाम है, हमने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किए, हमें कोई तजर्बा नहीं, हमने बच्चे नहीं पाले, हमने घर नहीं बनाए, और क्या हमने दुनिया में भला कोई दुनिया के काम नहीं किए? ना ना ना, सबसे डिफरेंट काम है दीन का। यकीन करिए कि भेड़ों के छज्जे में हाथ डालना आसान, लोगों से बुराइयां छुड़ाना, लोगों के अकायद को चेंज कराना, लोगों को नफ्स परस्ती से निकालना मुश्किल। अगर आपकी ये सख्त किस्म की अल्लाह ताला ने ट्रेनिंग ना की हो ना तो आप जम ही नहीं सकते। सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है इसका कि फिर आप शुरू करके पीछे हो जाते हैं, और याद रखिए कि अधूरी कोशिशें पूरे फवायद कभी नहीं देती। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम जो पीछे फिरौनी के घर में पले हुए थे, अब देखिए उसी फिरौन के पास भेज रहे हैं अल्लाह ताला। आगे इंशाल्लाह सूरह कसस में आपको पूरी तरतीब से स्टोरी मिलेगी, यहां बस चंक्स हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने चूंकि फिरौन के पास जाना था और फिरौन को अपने ऊपर बड़ा मान था, अना रब्बुकुम अल आला, अगर मूसा अलैहिस्सलाम का ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल और एक ये छोटा सा ट्रेनिंग सेशन ना होता ना, तो फिरौन के दरबार में पहुंच के वो वहां परेशान उनमें होते। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को खौफ और उम्मीद दोनों दिखा दी कि सब कुछ है मेरे हाथ में, फिरौन से ना डरना। असल में अल्लाह ताला बंदे को निडर करता है, बहादुर बनाता है। अब इमेजिन कीजिए फिरौन के पास भेजने की बात हो रही है।